अस्पताल के गलियारे में हल्की सी दवाइयों की गंध फैली हुई थी। सफ़ेद दीवारों पर लगी घड़ी का टिक टिक हर सेकंड को और भारी बना रही थी। रैना के पिताजी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। चेहरे पर थकान और आंखों में हल्की सी नमी थी। उनके पास बस एक पानी का गिलास और सिरहाने पर रखी दवाइयों का डिब्बा था। दरवाज़ा धीरे से खुला और अंदर आया विक्रम, काले ब्लेज़र में, बाल पीछे कंघी किए हुए, होंठों पर वही मीठी मुस्कान जो अक्सर किसी को भी पहली नज़र में भरोसेमंद लग सकती थी। लेकिन रैना के पिता जानते थे कि इस मुस्कान के पीछे जहर छुपा है। अरे अंकल जी, विक्रम ने कदम तेज़ी से बढ़ाए, मानो बहुत अपना सा हो। कैसे हैं आप? देखिए, मुझे जैसे ही पता चला कि आप अस्पताल में हैं, मैं भागा भागा चला आया। रैना के पिता ने मुश्किल से आंखें खोली, हल्का सा सिर घुमाया। उनकी सांस थोड़ी तेज चल रही थी, लेकिन आवाज़ में सख्ती बरकरार थी। तुम? उन्होंने बस इतना कहा, वो भी एक ठंडी नज़र के साथ। विक्रम ने पास रखी कुर्सी खींची और उनके बगल बैठ गया। हाँ, मैं ही। अरे अंकल, आपसे मिलने का मन हुआ। पता है बाहर बहुत ठंड है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको अकेले ऐसे नहीं छोड़ सकता। रैना के पिता कुछ बोले नहीं, बस अपनी नज़रें छत पर टिकाए रहे। विक्रम ने थोड़ी झिझक का नाटक करते हुए कहा, मैंने सुना है रैना आपका इलाज करा रही है और कितना मेहनत कर रही है। मॉल में छोटी सी नौकरी कर रही है, बस ताकि आपके लिए अच्छा इलाज करवा सके। उसने आह भरते हुए सिर हिलाया। काश अंकल, अगर मेरी और रैना की शादी हो गई होती तो उसे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये सुनते ही रैना के पिता की आंखों में गुस्से की एक हल्की सी चमक आई। उन्होंने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, शादी नहीं हुई, ये अच्छा हुआ, वरना मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। विक्रम ने नकली हैरानी दिखाई। अरे अंकल, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो बस... लेकिन वो अपनी बात पूरी करता, उससे पहले ही रैना के पिता ने एक लंबी गहरी सांस ली। उनकी छाती थोड़ा तेज़ी से उठने गिरने लगी। आप ठीक हैं अंकल? विक्रम ने झूठी चिंता दिखाते हुए पूछा, लेकिन अंदर से उसकी आंखों में हल्की सी चुभन थी, जैसे ये ताने उसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हों। इसी बीच कमरे का दरवाज़ा फिर से खुला और डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने मरीज़ के मॉनिटर पर नज़र डाली, फिर विक्रम की तरफ देखा। आप बाहर जाइए, मरीज़ को आराम की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर, मैं तो बस... मैंने कहा बाहर जाइए। डॉक्टर की आवाज़ में अब सख्ती आ गई थी। विक्रम के चेहरे पर एक सेकंड के लिए असली चिढ़ झलक गई, लेकिन उसने फिर से अपनी नकली मुस्कान ओढ़ ली। ठीक है अंकल, आप आराम कीजिए, मैं फिर आऊँगा। वो उठकर धीरे धीरे दरवाजे तक गया, लेकिन जाते जाते उसने रैना के पिता की तरफ एक ऐसी नज़र डाली जिसमें अहंकार भी था और बदला लेने का इशारा भी। दरवाज़ा बंद होते ही डॉक्टर ने रैना के पिता का चेकअप किया। आपको परेशान नहीं होना चाहिए, इससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। रैना के पिता ने बस हल्के से सिर हिला दिया। उन्हें पता था विक्रम की मौजूदगी ही उनके लिए एक जहर थी। उधर मॉल में रैना अपने सेक्शन में खड़ी थी। उसके सामने एक महिला ग्राहक थी, करीब 40-45 साल की, चेहरे पर हल्की मुस्कान और हाथ में एक साड़ी का पल्ला थामे हुए। देखिए बेटा, ये कलर मुझ पर कैसा लगेगा? महिला ने आईने की तरफ इशारा करते हुए पूछा। रैना ने साड़ी को ठीक से उनके कंधे पर रखा और आईने में देखते हुए कहा, मैडम, ये पीच कलर आपके स्किन टोन पर बहुत ग्रेसफुल लगेगा, और अगर आप चाहें तो इसके साथ गोल्डन बॉर्डर वाली ज्वेलरी पहन सकती हैं तो लुक और भी रिच लगेगा। महिला ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अच्छा लग रहा है, और कोई डिज़ाइन दिखाइए जिसमें थोड़ी सिल्वर वर्क हो। ज़रूर। रैना ने तुरंत अपने रैक से एक और साड़ी निकाली और बड़े सलीके से उसे फैलाया। ये देखिए, हल्का लैवेंडर कलर सिल्वर वर्क के साथ, शादी ब्याह में पहने तो भी परफेक्ट रहेगा और किसी फंक्शन में भी ओवर नहीं लगेगा। महिला ने साड़ी को हाथों में लेकर उसकी कारीगरी देखी और मुस्कुरा दी। ठीक है, ये पैक कर दीजिए। रैना ने सिर हिलाकर बिलिंग काउंटर की तरफ इशारा किया और सामान पैक करने लगी। लेकिन काम करते हुए भी कहीं अंदर उसके मन में एक बेचैनी थी, वो बेचैनी जो उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी।